सिद्धेभ्य ओम नमः। अरे ये रह गया प्रवचन सार, प्रवचन सुधा भाग 9, लेक्चर नंबर 721। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धारं नमो आययाणं नमो वर्षायाणं नमो लोये सुवसाहुं सुर असुर नरपति वंदने कविनाश्च भाति कर्मणे प्रणमन करो धर्मकर्ता तीर्थ श्री महावीर ने वैशेष तीर्थंकर ने सौसिद्ध शुद्धास्तित्व ने मुनि ज्ञान ध्रुव चारित्र कपवीर्या चरण संयुक्त ने ते सर्वने साते पथ प्रत्येक ने प्रत्येक ने वंदु हो मनुज क्षेत्रे वर्ततारहंतने अरहंतने सौसिद्धने यो नमस्करण करिए लिते गणधरने अध्यापकोने सर्व साधु समूहने तसुशुद्ध दर्शन ज्ञानमु ते पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करु साम्यनि जेनाभि शिव प्राप्ति बने। आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है। उस पर अमृतचंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेनाचार्य ने तात्पर्य युक्ति टीका लिखी है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं, वे प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से ये 9वीं पुस्तक अपनी चल रही है और हम आए हैं पृष्ठ संख्या 61 पर, 61 तीसरी लाइन है ना, नया पैराग्राफ यहाँ से पढ़ेंगे। वे किसके मां चल रही है, जो श्रामण्यार्थी है अब वो किनके पास चला जाएगा, आचार्य के पास। उनको गणी कहा और वो कैसे है तो कहते हैं कि पहले में पहले वो जो श्रामण्यपना है यानी जो श्रामण्य है, देखो उनके जो आचरण है वो स्वयं करते हैं करा लेते हैं। पेज नंबर 58 देखो, ये दूसरा पैराग्राफ है ना, ऐसे श्रामण्य का आचरण करने में और कराने में प्रवीण है इसलिए उनको गुणाढ्य कहा। पर वो श्रामण्य की बात पहले बताई थी, अकेले बाह्य आचार को श्रामण्य नहीं कहा था। देखो उसकी बात हम पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 53 निकालना, उसमें नीचे का पैराग्राफ है बोल्ड लेटर में लिखा है, वह इस प्रकार है। मिला आपको पेज 53, इतना पीछे नहीं होगा 53, हाँ लास्ट पैराग्राफ है देखो, वह इस प्रकार है लिखा है ना, आचरण करने में और आचरण कराने में आने वाली समस्त विरति की प्रवृत्ति के समान आत्मरूप। क्या कहते हैं ये जो मुनि के जो आचार है, कौन से आचार? 28 मूल गुण पालन करना है, ये पंचाचार है, ये सभी लेना उसमें, समिति गुप्ति वगैरह वगैरह। तो कहते हैं ये जो आचरण करने में और कराने में आने वाली समस्त विरति की प्रवृत्ति के, यानी जो बाह्य उनका आचरण है, निरतिचार पालन करते हैं व्रतों का, उसके समान आत्मा की दशा है। आत्मरूप बताए ना, यानी जैसे उनके बाह्य आचरण है, ये कौन से जीव लिए? छठे गुणस्थानवर्ती लिए, यानी जो मिथ्या दृष्टि है और बाह्य आचरण करते उनकी बात यहां नहीं उठाई है। चौथे पांचवे गुणस्थान वाले भी उनको विशेष ऐसे भाव आते हैं तो बाह्य में पहले अंगीकार करेंगे चारित्र, चारित्र ने जिसको कहेंगे व्यवहार से जिसको कहेंगे मुनि योग्य आचरण करेंगे,
28 मूल गुण
पालन करेंगे, जब तक उनको सातवा गुणस्थान नहीं प्राप्त होता है उनकी भी बात यहाँ नहीं है। ये चरणानियोग की बात है ना, चरणानियोग की चूलिका है। तो जो मुनि योग्य बाह्य आचरण है और उसके समान उसके तुल्य जहाँ अंतरंग दशा है, तो मुनि की अंतरंग दशा कैसी है? तीन कषाय के अभाव पूर्वक वितराग दशा है, इतनी आत्मस्थिरता है, ऐसे जीव की बात यहाँ उठाई इस गाथा में। फिर से देखो, छठे गुणस्थानवर्ती मुनि है, सिर्फ छठे, क्योंकि छठा सातवा छठा सातवा उनका चलता रहता है, पर सातवें में उनकी कोई बाह्य प्रवृत्ति नहीं है। भले बाह्य में हमें दिखाई देंगे कि वो चल रहे हैं, परंतु वो शुद्धोपयोग दशा है, बीच बीच में अपने अंतरा अपना अनुभव चलता रहता है उनका। तो यहाँ कहते आचरण करने में और कराने में आने वाली समस्त विरति की प्रवृत्ति, यानी बाह्य उनकी मुनि दशा, बाह्य उनके जो पालन होते हैं व्रतों का पालन होता है, पांच महाव्रत वगैरह सब, उसके समान उसके तुल्य उनके अंतरंग दशा है, आत्मरूपे ने अंतरंग दशा है। ऐसा जो सामान्यपना, इसको कहेंगे मुनिपना, जैसे बाह्य उनके व्रतादि है वैसे अंतरंग में वितरागता है, ये जो मुनिपना है, ये जो श्रामण्य है, ऐसा होने के कारण जो श्रमण है, ये किसकी बात चल रही? आचार्यों की, यानी उनके अंतरंग और बहिरंग दशा मुनि योग्य है। ऐसे श्रामण्य, अभी ऐसा जो श्रामण्य है वो स्वयं तो श्रमण है ही, और जो ऐसा निश्चय व्यवहार रूप जो श्रामण्य है, श्रामण्य ने मुनिपना, श्रमण्य ने मुनि, श्रामण्य ने मुनिपना, तो ऐसा जो श्रामण्य है उसका आचरण, आचरण ने केवल बाह्य आचरण नहीं अंतरंग बहिरंग दोनों, वो आचरण करने में और आचरण कराने में प्रवीण होने से गुणाढ्य है। ये आचार्य कैसे? तो गुणाढ्य है, यानी गुण संपन्न है। क्या है उनकी विशेषता? श्रामण्यपना जो है, अंतरंग बहिरंग दशा जो है, स्वयं वो अंगीकार की उन्होंने, यानी स्वयं वो है ही है, और वो दूसरों से भी करा लेते हैं मुनि मुनि संघ से, इसलिए उनको गुणाढ्य कहा। हम केवल बोल्ड देख रहे, क्योंकि हम टीका की बात पढ़ रहे हैं और आपको पहला रेफरेंस नहीं होगा तो आपको आगे की बात समझेगी नहीं, इसलिए हम जरा देखते हैं। नहीं नहीं, उनका निरंतर होता है, निरंतर होता है ना, उन्होंने वो व्रत अंगीकार किए हैं कि अगर चलेंगे तो ऐसा, अभी बैठे हैं तो वो चल नहीं रहे, तो क्या उनके इंडिया समिति पांच समिति है कि नहीं उनके? वो तो है कहेंगे हम, क्योंकि वो परिणाम है उनके, चलेंगे तो देख के चलेंगे, चार हाथ जमीन देख कर करेंगे, मौन से चलेंगे, सूर्योदय के बाद चलेंगे, सूर्यास्त के पहले चलेंगे, ये सब बातें उसमें आ गई। अंतरंग में जो तीन कषाय का तो उनको अनुदय है, वितरागता वो कंटिन्यूस है, निरंतर है, शुद्धोपयोग में हमेशा नहीं होगी, अभी उनकी परिणति चल रही है, छठे गुणस्थान की बात है, सातवें में शुद्धोपयोग में जाएंगे उसी को सातवा कहेंगे, और ये उनका शुभोपयोग का गुणस्थान है, परंतु शुभोपयोग है, परंतु वहां उस समय अलग अलग बातें बताई ना, बारह प्रकार के तब बताए, तो हर समय स्वाध्याय कर रहे ऐसा नहीं है, कभी स्वाध्याय भी करेंगे, कभी देव दर्शन करेंगे, आहार को निकलेंगे, है ना, ध्यान में बैठेंगे, इस तरह से।
आपका ये पूछना था,
हाँ,
कि उनका शुद्धोपयोग निरंतर चलता है क्या?
शुद्धोपयोग नहीं, शुद्ध परिणति निरंतर है। शुद्धोपयोग कभी कभी होगा, उसको हम सातवा गुणस्थान कहेंगे।
वो भी एक
अंतर, ये छठे गुणस्थान की बात चल रही है। हाँ,
ये भी एक अंतर मुहूर्त में हजारों बार छठे से सातवें और सातवें से छठे आते। हाँ,
हाँ, श्रामण्यपना तो बना रहता है, क्योंकि बाह्य उन्होंने तो बाह्य 28 मूल गुण तो अंगीकार किए हुए हैं और अंतरंग में वितराग दशा तो है ही है। ये उनका मुनिपना नहीं, तो मुनिपना गया आया ऐसा कहना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है, है ना? मुनिपना तो निरंतर है उनका।
ये शुभ उपयोग के लिए खास मुनियों को छठा गुणस्थान दिया है। अभी जो पांचवा गुणस्थान है, चौथा गुणस्थान है, वो जीव को शुद्धोपयोग और शुभोपयोग दोनों के लिए एक ही गुणस्थान है। अशुभ उपयोग तो वही गुणस्थान में होगा, लेकिन मुनिराज जो है उनके खास करके उनका नेचर समझने के लिए छठा गुणस्थान अलग सा होता है, जिसमें उनको 28 मूल गुण पालन करने के परिणाम होते हैं, पांच महाव्रत पालन करने के परिणाम होते हैं, और सातवें गुणस्थान में शुद्ध उपयोग में वो है, लेकिन वहाँ शुद्ध परिणति छठे में भी चालू है, ये कहना चाहते हैं। छठे में भी शुद्ध परिणति है तो सातवें में अबुद्धिपूर्वक राग भी है, इसलिए उनको बंद भी होता है।
अबुद्धिपूर्वक राग सातवें में भी
है। बिल्कुल,
सर्वत्र है, पहले गुणस्थान से लेकर दसवें तक है। देखो अभी उनको गुणाढ्य कहा, आचार्य कैसे उसकी बात चल रही है, उसके लिए और उन्होंने कोई विशेष बातें बताई है कि उनके जो कुल कैसा है, तो उच्च कुल के है वो। ये पेज नंबर 58 पर है ये बात। नीचे का पैराग्राफ देखो, सर्वलौकिक जनों के द्वारा निशंकतया सेवा करने योग्य होने से, मैं केवल बोल बोल पढ़ रही हूँ एकदम, चौथी लाइन में आने होने से, और कुलक्रमागत यानी कुलक्रम से उत्तर आने वाले, यानी कुलक्रम से जो उनमें है ऑलरेडी कैसे गुण है, कैसे क्रूरतादि दोषों से रहित है, दूसरी भाषा में सिंपल भाषा में कहना है तो उच्च कुल के है, जो कुल से जो चली आती है उनके जो बातें होती है, जो कुछ आचार वगैरह रहते हैं वो उच्च कुल वाले है। दूसरी बात कौन से है, अभी 59 पेज पर, इसलिए उनको क्या कहा, कुल विशिष्ट है। अब सेकंड पैराग्राफ, अंतरंग शुद्ध रूप का अनुमान कराने वाला बहिरंग शुद्ध रूप होने से जो रूप विशिष्ट है, वो रूप विशिष्ट रूप यानी वो गोरे है कि लंबे है, इसी इसकी बात नहीं उठाई। जैसे अंतरंग में उनकी वितरागता है तो उनकी मुद्रा भी ऐसे ही शांत परिणाम वाली होगी, तो अंतरंग उनकी जो स्थिति उसका अनुमान करने वाले उनकी बाह्य मुद्रा है, इसलिए उनको कहें बहिरंग शुद्ध रूप है, इसलिए उनको रूप विशिष्ट कहा। पहले क्या बताया था, कुल विशिष्ट, और ये रूप विशिष्ट है। अब आगे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, 59 पर नीचे का पैराग्राफ, यही बात उन्होंने समझाई है कुल विशिष्ट और रूप विशिष्ट की। नीचे देखो, नीचे का पैराग्राफ, अब गुणाढ्य की जिनके पास दीक्षा लेनी है वे आचार्य कैसे हैं और उनके आगे के दोष सॉरी गुण बता रहे, कौन से, बालकत्व और वृद्धत्व से होने वाली बुद्धि विकलता का अभाव होने से, बालक है या कोई वृद्ध है तो बुद्धि बुद्धि में कमजोरी हो सकती है, परंतु ऐसे कोई उनकी बुद्धि की विकलता नहीं है, बुद्धि में ऐसा कोई दोष नहीं है। आप कहेंगे तो यौवन है तो इतना ही कहा, तो कहते यौवनोद्रेक की विक्रिया से रहित है, युवा तो है परंतु युवा अवस्था में कोई दोष होते हैं वैसे कोई नहीं है उनके, तो वहां उद्रेक कहा। वही बात हम यहाँ पढ़ेंगे 61 पेज पर, जो अभी यहाँ तक हम आ गए हैं उसी को और भी समझाएंगे यहाँ पर। यानी यौवन होते ही नहीं, युवा होते हुए भी युवाओं का जो जोश है अन्य बातें है वैसा नहीं, वो शांत परिणामी वितरागी है। देखो यवनोद्रेक की विक्रिया, देखो उसे विक्रिया कहा, पहले बुद्धि की विकलता कही थी, विकलता अस्थिरता और विकलता, यौवन का जोश, अंदर से जुवानी का जोश हो, एक इंद्रिय फाट फाट दिखती हो, ऐसा होता नहीं, शांत 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 होते हैं, उद्धत बर्ताव नहीं होता। 25 वर्ष के कोई आचार्य हो, छोटी उम्र के हो, तीन कषाय का अभाव होता है। कोई मुमुक्षु कह रहे हैं कि कुंदकुंद आचार्य देव छोटी उम्र में आचार्य हुए थे, पूज्य गुरुदेव जी आचार्य हुए, कुंदकुंदाचार्य देव छोटी उम्र में आचार्य हुए थे, वह तो ऐसी सहज दशा लेकर आते हैं। जो वय विशिष्ट, पहले क्या कहा था, कुल विशिष्ट, फिर रूप विशिष्ट, अब वय विशिष्ट, ना अति बालक है और ना अति वृद्ध है, यानी क्यों कहते हैं, यानी बुद्धि में कोई उनके दोष नहीं है, युवा होते हुए भी युवा के समान उद्धत नहीं है, शांत है। रूप विशिष्ट, कुल विशिष्ट, रूप विशिष्ट और वय विशिष्ट, वय यानी एज उम्र, जो वय विशिष्ट कहने में आते हैं, वय में खास अलग, जैसे रूप में अलग, गुण में अलग, वैसे वय में भी खास अलग, और यथोक्त यथोक्त यथाउक्त यानी जैसे बताया है वैसा, श्रावण्य का आचरण करने तथा आचरण कराने संबंधी पौरुषेय दोषों को निशेषतया नष्ट कर देने से, क्या कहते हैं, श्रावण्य ने मुनिपना, ये आचार्य स्वयं है, स्वयं तो श्रावण्य का आचरण करते हैं और मुनि संघ से करवा लेते हैं, तो उस संबंधी यानी मनुष्य के द्वारा कोई जो उसमें दोष लगते हैं, ऐसे दोषों से रहित है, पौरुषेय ने मनुष्य के लिए संभवित, आगे लिखा है ना, मनुष्य के योग्य जो दोष है ऐसा दोष उसे होता नहीं, समझे, यानी वो कोई भी दोष नहीं होते हैं उनके, और वो स्वयं आचरण करते और करा लेते, उनमें कोई दोष नहीं लगता। श्रावण्य का आचरण करने तथा आचरण कराने संबंधी पौरुषेय दोषों, मनुष्य का दोष निशेषतया नष्ट कर देने से, निशेष यानी कोई बाकी नहीं है, ऐसे कोई दोष नहीं, सारे दोष टाल कर नष्ट कर दिए, नहीं उन्हें दोष होता ही नहीं है, मुमुक्षुओं के द्वारा, मुमुक्षु ने जो मुनि संघ है उसको मुमुक्षु कहते हैं, प्रायश्चित्तादि के लिए जिनका बहु आश्रय लिया जाता है, क्योंकि ये जो पद्धति होती है जो मुनि संघ है, उनके जो कोई आहार विहार में जो कोई दोष लगते हैं और उनके भी ख्याल में आते हैं, तो स्वयं आचार्य के पास जाकर अपने दोष बताते हैं वहां पर, और फिर आचार्य जो उनको जो कोई प्रायश्चित वगैरह बताएंगे उसको वो अंगीकार करेंगे,
यानी आचार्यों के पास जाके कन्फेस करते हैं।
ये कन्फेस करना ये अच्छा नहीं शब्द, क्योंकि हाँ दोष का कथन करते थे,
तो कन्फेस का अर्थ क्या,
जिनका बहु आश्रय लिया जाता है, अपना दोष जिनके पास प्रकाशित करते हैं, ऐसे मुनि ऐसे होते हैं, ऐसा कहते हैं, समझ में आया, हा हा हा, ऐसा भाव आया था, ऐसा कहे तो उसका तिरस्कार न कर दे, क्या कहते हैं मुनि बताते हैं, क्योंकि उनको तो इतना सरल परिणाम है, उनके मुनि संघ जो है, किसी मुनि के कोई परिणाम हुआ, खोटा परिणाम हुआ, तो आचार्य के सामने जाकर बताते कि मेरे से ये दोष हुआ है, मेरे ऐसा परिणाम आया, तो क्या कहते हैं यहाँ की, क्या लिखा उन्होंने, ऐसा भाव आया था, ऐसा कौन कहेंगे, उनके शिष्य, उसका तिरस्कार न कर दे, मैंने ऐसा कैसा हुआ वगैरह वगैरह नहीं, वो शांत परिणाम से उसका जो कुछ यथा योग्य उसकी बात करेंगे, शांत शांत रहे, साधारण जनता उनका आश्रय करे, महाराज हमें हमारी भूमिका प्रमाण में दोष लगा है, ऐसा सरलपने कहे तो शांतपने सुने, समझ में आया, आहा, ये अपने दोष प्रकट करना ये भी वो मुनि जीवन का अंग है, वो मुनि के लिए कार्यकारी है, उनको आवश्यक है। नहीं तो क्या है, उसमें भी दोष टाल कर सब आते हैं। उसने आपने अगर डिटेल में पढ़ा हो तो ऐसा नहीं कोई मुनि अपने दोष बता रहे तो ये तो नहीं, उन्होंने बता दिया, आचार्य ने क्या कहा सुन लिया चलो, हमारा भी ऐसा नहीं करते हो। और साक्षात आचार्य के सामने जाकर बोलकर ये अपना भाव सुनाते हैं। आपने जो कन्फेस की बात की थी ना, तो क्रिश्चियन लोगों में ऐसा है, वो पादरी अंदर बैठता है और जाली के बाहर उसका मुंह ये नहीं देखता, इसका मुंह वो नहीं देखता, इसी बात ऐसा कन्फेशन नहीं होता है। आचार्य उनके प्रत्यक्ष जाकर उनको अपने दोष बताएंगे और वो जो कुछ कहेंगे उसको सुनेंगे, प्रायश्चित। अभी वो प्रायश्चित का भी बहुत बड़ा साइंस है उसका, केवल प्रायश्चित ने कोई सजा देते ऐसी बात नहीं होती, यानी वो आत्मस्थिरता के लिए कार्यकारी इस तरह से उनको उपदेश देंगे वो। देखो अपने दो जिनके पास प्रकाशित करते हैं ऐसे मुनि ऐसे होते हैं, ये हमने पढ़ा था, ठीक है फिर पढ़ लेती हूँ। ऐसा भाव आया था ऐसा कहे तो उसका तिरस्कार न कर दे, शांत शांत रहे, साधारण जनता उनका आश्रय करे। महाराज हमें हमारी भूमिका प्रमाण में दोष लगा है, ऐसा सरलपने कहे तो शांतपने सुने। समझ में आया, आहा हा, जिनका बहु आश्रय लिया जाता है, यानी उनका आश्रय से जीव और अपना पुरुषार्थ बढ़ाना चाहते, बहुत आश्रय लिया जाता है। देखो कोई तो किसी का कुछ करता नहीं है, परंतु ये निमित्त नैमित्तिक रूप से इस तरह से ये जो मुनि के आचार जो होते हैं, और वो आचार्य स्वयं तो वो करते ही पालते ही पालते हैं, पूरे संघ से वो बराबर होता है कि नहीं उस पर उनका लक्ष्य रहता है, ध्यान रहता है। इसलिए जो श्रमणों को अति इष्ट है, लो विशिष्ठ मिठ्ठ धर्म शब्द है ना, अंतिम शब्द है, श्रमणों को अति इष्ट है। श्रमण ने अन्य जो है ना मुनिराज उनके संघ में, उनके लिए वो अत्यंत इष्ट है, संतों को तो प्रिय है। आहा हा, वर्तमान में तो एक भी दिखे नहीं, और यहाँ तो कहते कि साधु को प्रिय है, दूसरे भावलिंगी साधु है उनका व्यवहार ऐसा है, उसमें ऐसा आचार हो वह उनको इष्ट है। समझ में आया, लो अति इष्ट है। अरे अति इष्ट समकीति को तो कोई इष्ट होते नहीं ना, यह तो व्यवहार की बात चलती है ना। समझ में आया, क्या कहते हैं, स्वयं ही प्रश्न पूछते हैं, जो सम्य दृष्टि है उसको तो कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है, तो इनको अति इष्ट क्यों कहा, तो ये तो व्यवहार स्नेह की भाषा है। धर्मी को, धर्मी किसको कहेंगे, ज्ञानी जो है उसको धर्मी कहेंगे, सम्य दृष्टि जो है। धर्मी को अपना शुद्ध स्वरूप के सिवा इष्ट कोई चीज ही नहीं। समझ में आया, हम कहते हैं हेय गेय उपादेय, बाकी सब गेय में ही डालते हैं, कैसा गेय, ये इस रूप में नहीं हूं। उनके तो अपने स्वभाव ही इष्ट है और कोई चीज उनके लिए इष्ट नहीं है। समझ में आया, राग भी इष्ट नहीं तो पर चीज कहाँ से इष्ट आई। अभी जो मुनिराज हो गए 28 मूल गुण पालन करने के भाव है उनके पर्याय में, उसको वो इष्ट नहीं मान रहे हैं, ख्याल में आई बात, यही कह रहे, राग भी इष्ट नहीं तो पर चीज कहाँ से इष्ट आई। तो कहते पर पदार्थ जो पर जो है देव गुरु शास्त्र भी, वो कैसे इष्ट हो गए उनके लिए, ये तो व्यवहार नय का कथन है, चरणानुयोग की भाषा है। लेकिन चरणानुयोग में ऐसा शुभ राग होता है तो ऐसी चीज हो उसे इष्ट तरीके व्यवहार लगता है, व्यवहार से इष्ट है, ये कथन जो है वो चरणानुयोग के कथन है, उसकी शैली है, ये लिखा ही है, चरणानुयोग की शैली ऐसी है। आहा हा, ऐसे गणी के निकट, गणी समझते हो, गणी यानी आचार्य, गण यानी मुनि, गण जिसको भी ना मुनियों का जो संघ होते हैं उसको गण कहते हैं, और वो गण के जो अधिपति है आचार्य जो है उनको गणी कहते हैं। देखते ऐसे गणी के निकट निकट ने उनके पास जाके ये जो श्रामण्यार्थी है अभी दीक्षा लेने वाले है वो ऐसे पहले पहले आचार्यों की क्या विशेषता है वो बताया, ऐसे आचार्य के पास हो जाता है, फिर आगे कहेंगे वो नमस्कार करता है और विनती करेगा कि मुझे अनुग्रहित करो, वो बात आएगी। अभी मुमुक्षु पूछते हैं यहाँ बहु आश्रय लिखा और कहते हैं कि सम्यक दृष्टि को किसी का आश्रय नहीं, वो बात आई थी ना, आचार्य है बहु आश्रय यानी सभी लौकिक जन भी और अन्य मुनि भी उनका आश्रय लेते हैं, आश्रय लेते हैं उनके उपदेश के अनुसार चलते हैं। तो ये जो बहु आश्रय लिखा है वो कैसा है, व्यवहार ने का कथन है, क्योंकि सम्य दृष्टि को किसका आश्रय, वो तो अपने अपना ही आश्रय है और पर का आश्रय तो है ही नहीं है, इसलिए प्रश्न पूछा खास। पूज्य गुरुदेशी उसका जवाब दे रहे, सम्यक दृष्टि को किसी का आश्रय नहीं, यहाँ चरणानुयोग का व्यवहार नय का कथन है ना। देखो कोई कथन है और वो शास्त्र का कथन है तो उसमें कोई विरोध नहीं होता, यहाँ तो ऐसा लिखा है और यहाँ तो आश्रय कहते हैं इसलिए ये कोई अलग होगा, इसमें यहाँ कोई दोष लगता होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि कौन से नय का कथन है कौन से अनुयोग का कथन है उस पर उसकी शैली जो है भाषा शैली वो अलग अलग होती है। देखो यहाँ क्या है, चरणानुयोग का व्यवहार नय का कथन है, सम्यक दृष्टि का तो आत्मा के सिवा कोई आश्रय है नहीं, धर्मी को धर्मी नहीं सम्य दृष्टि, अपना पूर्णानंद प्रभु कौन सा है, स्वभाव उसके सिवाय किसी का आश्रय है नहीं, वह निश्चय की बात है, ये जो बताया है बारंबार और वो सत्य बात है, वो निश्चय की बात है, यथार्थ की बात है, यानी रियलिटी है, वो यथार्थता है ना, क्या रियलिटी है, व्यवहार की बात चले परंतु कथन में आता है कैसा आएगा, चरणानियों की शैली चले तब ऐसा कहे कि संतों को बहु आश्रय करने लायक ऐसे संत है, बहु आश्रय ने अनेकों के लिए वो आश्रय करने योग्य है, ऐसा कहने में आता है, कहां मेल करना बराबर मिलान है, निश्चय ऐसा हो तो ऐसा उसका वय विशिष्ट कुल विशिष्ट और इष्टतर संतों को इष्टतर है, ऐसा विकल्प वाले को ऐसा मानते हैं। ये समझ में आई बात, ये जो कुल विशिष्ट रूप विशिष्ट वय विशिष्ट बताया है और बहु आश्रय वाले है ऐसा कहा है, ये सब कैसे है, तो चरणानुयोग की शैली है, व्यवहार ने का कथन है। अब ये तो आचार्यों के सारे उन्होंने गुण बताए, ऐसे गणी के निकट, गणी ने कौन, आचार्य। अब ये जो दीक्षार्थी जो है श्रामण्यार्थी जो है ना, वो ऐसे मुनियों के ऐसे आचार्य के निकट जाएगा, उनके पास चला जाएगा, शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि के साधक, शुद्धात्म तत्व ने अपना स्वयं का आत्मा, उसकी उपलब्धि होना ने उसका अनुभव होना, और वो उपलब्धि के साधक जो अपने आत्मानुभव प्राप्त करके उसी में स्थिर होना चाहते हैं वो उसके साधक है। देखो शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि के साधक आचार्य के निकट वो जाकर क्या बता रहे हैं, शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप सिद्धि से मुझे अनुग्रहित करो, किनके पास जा रहे हैं, साधक के पास, कौन सी साधना करे, शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि की साधना में जो रत है, और वहां जाके कौन सी प्रार्थना करते हैं, ये मेरा धंधा बराबर चलो ऐसा, ये मुनियों के पास जाके क्या क्या गिड़गिड़ाते मालूम है आपको, नहीं कभी सुना नहीं आपने, अरे कोई कहता है अरे मेरी मेरी कोई बीमारी है क्या करे, कोई कहता है हमारा बच्चा ऐसा है वो तो परीक्षा में फेल हो रहा है, कोई कहते हैं हमारी खेती बराबर नहीं हो रही, कोई कुछ ना कुछ ये अपनी लौकिक सारी उनके पास रोना रोएंगे, हाँ क्या करते हैं? तो क्या करना है उस सुपारी का? अच्छा सुना आपने, अभी कोई ऐसा जाता है उनके पास तो वो सुपारी मंगवाते हैं, तो ऐसा कुछ फूक देके उनको सुपारी देते हैं, ये गले में रखो दुकान के कैश बॉक्स में तो तुम्हारा धंधा चलेगा। ये मुनि का काम है। तो उनके गांव में बहुत मिलते हैं। देखो ये क्या कहते हैं, ये किसके साधक है? शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि के साधक है, ऐसे आचार्य हैं। और उनके पास जाकर क्या मांगता है कि मुझे भी शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि हो। देखो फिर से ये पहली लाइन के लास है ना, शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि के साधक आचार्य के निकट, इन्हें आचार्य के पास जाकर। अभी इन्वर्टेड में क्या लिखा है, शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप सिद्धि से मुझे अनुग्रहित करो, यानी मुझे भी शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि होनी चाहिए, वो सिद्धि है, वो सिद्धि मुझे दे दो। कोई किसी को अनुभव दे नहीं सकता, कोई किसी को समय दर्शन समय ज्ञान बांट नहीं सकता, जैसे भी चलता है बाहर व्यवहार लौकिक में चल रहा है, ऐसा ऐसे बांटने वाले है समाज में। तो क्या कहते हैं ये
वो बोलते है। मुझे को नहीं मिले बोले।
देखो बाहर धर्म के नाम पर क्या क्या चल रहा है आप इमेजिन नहीं कर सकते। आज आए ना आपको कोई मैसेज आया आपको
अमेरिका से
किसी ने फॉरवर्ड किया है, यानी दुनिया में क्या क्या चलता है, घर बैठे वही से हमको फोन पर ही मैसेज मिल जाते हैं। हम तो किसी के पास जाते नहीं है, तारा भाई को सुनना है क्या बोला, जरा पढ़ के सुना। उन्होंने भी फॉरवर्ड किया है मैसेज, लाओ मैं पढ़ती हूँ। किसने भेजा वो भी हमको, हमारे पास उनका नाम लिखा हुआ नहीं है, ऐसे कोई अननोन होगा पता नहीं है। देखो आई एम स्ट्रगलिंग सो बैडली राइट नाउ, वी आर वॉचिंग अ फिनिक्स गर्ल टेक दीक्षा विथ राकेश भाई। अच्छा ये फॉरेन वाले, फॉरेन में फिनिक्स में ही चल रहा है क्या? अच्छा आपको मालूम है, अच्छा अच्छा ये हमको ये सब आप ही लोगों के द्वारा पता चलता है। हाँ तो यही बता रहे हैं, फॉरेन की बात है कि फिनिक्स में वो कोई दीक्षा ले रही है बेन,
स्पेनिश गर्ल
यानी कोई लड़की ले रही दीक्षा, एंड इट इज जस्ट सच अ हिपोक्रिटिकल थिंग। अब हिपोक्रिटिकल किसको कहना, हिप्नोटाइज नहीं, दोहरी बात
ढोंगी बात।
हाँ क्या करे, दे डूइंग अ गरबा नाइट मना रहे वहां पर, अभी जो दीक्षा लेने वाली लड़की है उसके लिए विथ पिठी एंड मेहंदी। इतना ही नहीं, राकेश भाई डज मेहंदी ऑन द गर्ल्स हैंड्स, ये लिखा है वो मैं पढ़ रही हूँ, यहाँ है लिखा हुआ, मैं मेरे मन से तो कुछ बात नहीं, और ये किसने भेजा है वो भी मुझे मालूम नहीं है कि राकेश भाई डज मेहंदी ऑन द गर्ल्स हैंड्स एंड ऑल्सो पुट्स पिठी ऑन हर हैंड्स एंड फेस। इट इज सो डिस्टर्बिंग टू मी, ऐसा किसी ने अभी ये जो है ना उन्होंने भेजा है वो भी फॉरवर्ड किया है, तो किसी अमेरिका वालों ने इनको भेजा होगा। हाँ आगे लिखते है, आई हैड टू गेट अप एंड लीव, यानी वो देखने के लिए भी अच्छा नहीं लगा तो उठकर छोड़ के चले गए, बिकॉज पीपल ऑन स्टेज केप्ट कॉलिंग राकेश भाई देयर गॉड। अभी इतना तो लिखकर भेजा है, अभी हमें क्यों भेजा है वो भी मुझे पता नहीं है, शायद अपना दुख किसी के साथ बांटना चाहते होंगे
तो आप ही मिले
अरे दीक्षा लेने के लिए क्या वो मेहंदी लगाते हैं क्या? अरे लगा रहे, कौन लगाते है? मुनि लगाते है? दो, अरे ले रहा है तो उनके घर वाले लगाएंगे ना, तो हाँ तो ये क्या हो रहा है, ये मुनि कहाँ है? चलो जाने, जाने रवि किसी का नाम लेकर बोलना नहीं है हाँ चलो जाने।
अरे उस पागल के चंगुल से तुम छुट्टी उसकी बात नहीं करती
ये नहीं मनीषा,
मनीषा
जाती थी वहाँ। अरे 11 साल उसके चंगुल में थी। नहीं राकेश को नहीं मानती, ग्रुप के साथ होगा मगर उसके कोई प्रोग्राम वगैरह अटेंड करने नहीं जाती। अभी पहले तो क्या वो सब पागलपन चलता था वहाँ पर, उसको सम्य दृष्टि मानते थे और उसको देख देख कर रोते थे, क्यों रोने से निर्जरा होती ऐसे मानते थे। ये ऐसे पागलपन चलता है वही तो, यानी वहां से छोड़कर जब यहाँ आई ना और यहाँ रोज सुनते 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 उसको पता चला सच्ची बात क्या है, तो यहाँ सुनते सुनते भी उसको रोना आता था कि हम कहाँ फंस गए थे, उसमें से निकलना बहुत मुश्किल बात है, कोई भी नहीं निकलता एक बार फंस गया तो, जैसे हिप्नोटाइज होते हैं लोगों से, क्या करें,
हिपोक्रेटिक।
हाँ वही लिखा है ना, डबल डबल दोहरी। यहाँ क्या लिखता है देखो, सेकंड लाइन, वहां जाकर क्या मांगते हैं, किसकी याचना करते हैं, शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप सिद्धि से मुझे अनुग्रहित करो, मुझे उपकृत करो, यानी वो सिद्धि मुझे दे दो, कोई किसी को देता नहीं है। फिर भी ये चरणानियों की ऐसी विधि होती है और वो आचार्य भी वो उनके जो योग्य है क्या नहीं है पात्रता देखकर फिर उनको दीक्षा देंगे। ऐसे हम कहीं शिष्य ज्यादा से ज्यादा होते इसीलिए किसी को भी दीक्षा दे ऐसा नहीं होता है, ये उनकी भी जवाबदारी होती है कि जो सामने वाला जो दीक्षा लेने को आया है जीव वो बराबर पात्र है कि नहीं है, उसके योग्य है कि नहीं है, ये बराबर देखेंगे फिर दीक्षा देंगे।
तो ये जो कथन है
तत्व की
व्यवहार
कथन है, बिल्कुल व्यवहार कथन है, क्योंकि वो कोई किसी को कुछ नहीं देता है, ना सम्यक दर्शन देता है ना सम्यक ज्ञान देता है। अरे सम्यक चारित्र तो देंगे नहीं, ये तो अंतरंग में चीज तो अपनी है अंदर से, और बाहर में व्रतादि वो तो कैसे तो अंगीकार करते ही करते हैं, वो व्रतादि करने से अंतरंग में शुद्धि बढ़ती है ऐसा भी नहीं है, परंतु अंतरंग में इतनी वितरागता नहीं है तो राग बाकी है, तो उस राग का कार्य क्या है अभी मुनि योग्य जो है तो कहते बाहर में वो तो 28 मूल गुण आदि पालन करने का भाव है वहां पर। आप बोलिए, बढ़कर बोलिए।
नहीं, नहीं, श्याम प्रसाद नाम के कोई भाई साहब है,
हाँ।
उन्होंने मैसेज दिया है,
हाँ।
राकेश जी इज ओनली अ गुरु नॉट अ मुनि टू, एंड मुनि कैसे मेहंदी लगाते हैं ये तो पागलपन है।
अरे मुनि भी नहीं लगाएगी, अरे गुरु भी नहीं लगाएगी।
अरे भाई वो गुरु तो और कचाई है, मैं तो कहता हूँ वो तो और एक कचाई चौकड़ी का अभाव, दो कचाई चौकड़ी का अभाव, वो भी जीव ऐसी बात
तो उनके
नहीं
पास जाके दीक्षा क्यों ले रहे, मुनि के पास दीक्षा ली जाती है, आरिका के पास जाएंगे आरिका के साथ मुनि।
अरे वो स्पेनिश भाई है,
हाँ।
उसको क्या अक्कल है, लेकिन वो लोगों को बताना चाहता है मेरे पीछे इतने पागल है तुम क्यों नहीं बन रहे, इसलिए वो बता रहे कुछ बेचारा।
चलो
ओवर होता है ना, ज्यादा ओवर होता है
अभी, सब चल रहा है चलने दो, हमारा कार्य क्या है, दुनिया को देखकर कसाई मत होना। हमें निर्णय होना चाहिए कि सत्य क्या परिस्थिति है, सत्य क्या होना चाहिए। सच्चे देव, सच्चे गुरु, गुरु यानी मुनिराज और सच्चे शास्त्र, इनका निर्णय हमें होना चाहिए। दुनिया तो ऐसी चलेगी, अभी पंचम काल में ऑन डिटेरिएशन होने ही वाला है। ऐसे निकृष्ट काल में हम उत्कृष्ट उपदेश हमें प्राप्त हुआ है, हम उसमें डटे रहे और दुनिया को सुधारना तो है ही नहीं हम। पर ऐसे कोई कहां कहां से, हम घर बैठे हैं, कहीं जाते नहीं, कोई व्हाट्सएप ग्रुप पर भी नहीं है, फिर भी कोई ऐसे हमको भेजते रहते हैं कि इनको अवगत तो कराए कहां क्या चल रही है। परसों भी किसी ने वो भेजा था ना मैसेज, मेरे ख्याल से हेमचंद जी ने दूसरा कुछ मैसेज भेजा था,
अज्ञानता की महिमा,
अज्ञानता की महिमा करके। हाँ, वो तिरंगा अभिषेक कुछ चल रहा था कहीं पर। हाँ, देखो हम आगे बढ़ते हैं, यानी वहां जाकर वो शुद्धात्मा की उपलब्धि के लिए मुझे अनुग्रहित करो, ऐसा आचार्य को कह रहे।
मुझे ये कहना है कि हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि हम ऐसे के चंगुल में न फंसे,
नहीं फंसना चाहिए,
ये अपने सेफ्टी के लिए है।
बिल्कुल,
हम जानते हैं कि दुनिया में खोटे सिक्के बनाने वाले बहुत है।
हाँ।
और उनके हाथ ऊपर तक पहुंचे हुए हैं।
हाँ।
हम उनको कुछ नहीं कर सकते,
कहेंगे तो भी विघ्न करेंगे आपको, ऐसा है।
हाँ। वो तो उल्टा अपने को खत्म कर देंगे।
सत्ता रहती नहीं, वो सत्ता बनाए रखने चाहते
हैं। ऐसा है, हम तो खोटे सिक्के अपनी जेब में न,
अपने जेब में नहीं आवे,
खोटी मान्यता न रहे, इसकी कोशिश कर रहे हैं। और कोई बाहर से ऐसे श्यामा प्रसाद जैसे कोई बच्चा में वो उपकृत करते हमको।
चलो ठीक है, ये तो मुझे तो दिख नहीं रहा, ये तो बाद में देखूंगी मैं। आचार्य भी शुद्धात्म तत्व के साधक है ऐसा कहते हैं। देखो फिर से ऊपर से तीसरी लाइन पढ़ती हूँ मैं दोबारा। दोनों लिए, एक तो शुद्धात्म तत्व उपलब्धि के साधक आचार्य है, ये तो समझ में है ना, आचार्य स्वयं उसके साधक है, किसके, शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि के साधक है। आचार्य भी शुद्धात्म तत्व के साधक है ऐसा कहते हैं, व्यवहार है लेकिन उसके साधक नहीं। क्या कहा, व्यवहार है ने, व्यवहार में जिसको हम व्यवहार कहते हैं, ऐसे 28 मूल गुण पालन करने के शुभ भाव उनके है, 28 मूल गुण पालन कर रहे हैं, परंतु उसके साधक नहीं है। ख्याल में, क्योंकि ये केवल पढ़ जाने से क्या ख्याल नहीं आता, किसके साधक है आचार्य, शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि के साधक है। पर ये जो व्यवहार से जो हम कह रहे हैं उनको, कौन से 28 मूल गुण आदि उनका जो व्यवहार है, उसके साधक नहीं है। वो है उनके पर्याय में, कर रहे हैं, वो उनके ज्ञान का गेय है, ऐसा उनके राग उस भूमिका में आता है, उस राग के साधक नहीं है, ऐसे कहना है उनको। चल मैंने, व्यवहार है लेकिन उसके साधक नहीं, उसका अर्थ क्या है, व्यवहार है ने और राग है, कौन सा राग, कि 28 मूल गुण आदि जो पालन करने का शुभ राग है उसके साधक नहीं है। उसके साधक नहीं, वो राग को साधन करना नहीं चाहते। साध्य क्या है उनका, शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि उनका साध्य है, उसी को साधना चाहते हैं, परंतु उस भूमिका में ऐसा राग आए बिना रहता नहीं है। पर उसके साधक ऐसा नहीं कहा, साधक तो शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि के साधक है, है भले विकल्प परंतु उसके साधक नहीं है ना। देखो, है भले विकल्प नहीं, उस भूमिका में ऐसा विकल्प होगा, एक घर में रहते हुए ऐसे कोई आचार्य नहीं बनेंगे या भगवान नहीं बनेंगे गृहस्थ आश्रम में, ख्याल में आई थी ना। परंतु उनके कौन सा, ये सारे जो 28 मूल गुण है वो पालन करने के विकल्प हो गए, परंतु उसके साधक नहीं है, वो उनका हेतु नहीं है साध्य करने का। उनको वो क्या चाहते हैं, शुद्धात्म तत्व की पूर्ण रूप से उपलब्धि हो, शुद्धात्म तत्व, परमानंद मूर्ति प्रभु यानी हमारा स्वयं का स्वभाव भाव, उसकी उपलब्धि, उस
पालन करना भी शुभ राग ही
बस बस शुभ राग है और वो बंध का कारण है, उससे मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष मार्ग में वो आता है, बिल्कुल आता है, क्योंकि मुनि जीवन जो है वो देखो एक बार समय दर्शन हुआ है, वितरागता शुरू हुई है। शुरुआत में चौथे वाले की वितरागता बहुत कम है और उनके जो शुभ राग है वो बाह्य जो है शुभ अशुभ भी है उनको, तो राग का पोर्शन यानी परसेंटेज ज्यादा है। जितनी अंतरंग स्थिरता बढ़ती चली जाएगी, दो कषाय का चौकड़ी का अभाव हुआ, वितरागता बढ़ी, जिसको हम पांचवें गुणस्थान के योग्य कहेंगे, देश चारित्र नाम है उसका, तभी दो कषाय बाकी है, तो अनुव्रत वगैरह धारण करने के, प्रतिमा अंगीकार करने के भाव होंगे बाह्य में, अंतर बाह्य इसका हम सुमेल करके चलेंगे। फिर और स्थिरता बढ़ती है, वितरागता बढ़ती है, तो मुनि जीवन यहाँ तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, वितरागता बहुत बढ़ी है, फिर भी राग अभी बाकी है, संज्वलन है ना अभी, और उसका कार्य क्या, ये राग है, कौन सा 28 मूल गुण निरतिचार पलन करना, ये राग भाव है, और वो राग भाव से बंद होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, परंतु ये मोक्ष मार्ग अभी ये ऐसे ही वितरागता सरागता साथ साथ चल रही है, जितना राग है उतना बाह्य में वैसे उनके पालन करने के भाव भी होंगे, यानी ऐसा राग उस भूमिका में आता है, वो करते ऐसा नहीं कहेंगे, आता है, पर ये उसके साधक नहीं है, वो चाहते क्या है उनका कि साधना चाहते अपने आत्मस्थिरता अधिक से अधिक, परंतु उस भूमिका में ऐसे राग आए बिना रहते नहीं है, तो उसको पंचाचार अंगीकार करते ऐसा भी लिखा था हमने, पढ़ा था उसको, तो चरणानुयोग की भाषा में ऐसा कहेंगे, परंतु मुनि के पास जाकर क्या उन्होंने विनती की, वो जो शुद्धात्मा की उपलब्धि के साधक है ना, तो उस सिद्धि से आप मुझे अनुग्रहित करो, मुझे उपकृत करो।
देखो बात ऐसे होती है, मुनि अवस्था में जिनके तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है उनको नियम से ऐसे राग होते हैं,
बिल्कुल
वो करते नहीं, वो उसके करता
वही
नहीं,
तो कहा ना उनका आता है,
वो ज्ञाते हैं, ज्ञाता है उनके,
बिल्कुल,
इसलिए यहाँ कहते हैं कि अगर वो नहीं करने नहीं, मैं तो शुद्धात्मा में हूँ, मैं तीन कषाय चौकड़ी का अभाव, मैं बिल्कुल जैसे चलने वैसे चलूंगा,
ऐसा नहीं होता,
ऐसा नहीं होगा। अगर मान लो 28 मूलगुण है और 28 मूलगुण में से एक मूलगुण भी यथोचित पालित नहीं होता है तो छठा गुणस्थान ही नहीं होगा।
अरे छठा क्या, वो तो अभी अगर मानते हैं अपनी मुनि है और ऐसी परिस्थिति नहीं है तो मिथ्या तो चल रहा है उनका,
ये बहुत जिसको कहते हैं डेलिकेट बात है।
परंतु ये पूरा निर्णय हमें होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष की तरफ देखकर नहीं कहना है, परंतु मुनि जीवन यानी मुनि का रूप कैसा होता है। अभी कोई अरिहंत तो है नहीं हमारे यहाँ, तीर्थंकर कोई नहीं है, परंतु हम भगवान कैसे होते उसका नक्की करते कि नहीं, स्वरूप सामने नहीं है फिर भी हम आगम के द्वारा उसको नक्की करते हैं, ऐसे ही मुनिराज का भी स्वरूप हमें आगम के द्वारा नक्की करना है। कोई मिले तो आप परम भाग्य है आपका, नहीं मिले तो क्या है, आपको निर्णय तो होना चाहिए, ख्याल में आई ना बात।
नहीं, लोगों का ऐसा कहना है कि आजकल तुम्हारे कहे अनुसार, यानी तुम्हारे यानी हमारे नहीं,
आगम के अनुसार,
आगम के अनुसार कोई मुनि ही नहीं है तो क्या करें, हम जो है उनको माने कि नहीं, ऐसा आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो हम तो ऐसा सोचते हैं आज के तारीख में कोई सर्वज्ञ अपने यहाँ उपलब्ध नहीं है भरत भूमि में, तो आप सर्वज्ञ को मानेंगे कि नहीं, क्या किसी को भी सर्वज्ञ कहेंगे? यानी लोग विचार ही नहीं करते कुछ भी विरोध के कारण, विरोध करना बस,
तो विरोध नहीं, हम तो देखो मुनि जीवन तो बहुत अद्भुत बात है, और ऐसे देव जो है अरिहंत देव है और ये मुनिराज है और शास्त्र है तो परम वंदनीय है, क्योंकि उसके निर्णय हुए बिना हमारे धर्म की शुरुआत नहीं होती है ना, वही देखो आगे पढ़ते हैं। और ये सब आचार्यों ने जो लिखी हुई बातें हैं, अभी प्रवचन किसने, प्रवचन सार किसने लिखा है, कुंद कुंद आचार्य पंचम काल के मुनिराज ही तो थे ना, तो मुनि का स्वरूप उन्हीं ने तो बताया है और उसी के अनुसार हम निर्णय कर रहे हैं, अपने मन से कोई निर्णय नहीं कर रहे हैं। शास्त्र के आधार से हम मुनि का स्वरूप कैसा होता है उसका निर्णय कर रहे हैं। देखो यहाँ क्या पढ़ते हैं, व्यवहार है मिला आपको नीचे से दूसरा पैराग्राफ ऊपर से चौथी लाइन, व्यवहार है यानी उनके जो 28 मूल गुण आदि निराचार पालन कर रहे हैं वो है लेकिन उसके साधक नहीं है, भले विकल्प परंतु उसके साधक नहीं। शुद्धात्म तत्व परमानंद मूर्ति प्रभु, ये शुद्धात्म तत्व यानी अपना स्वभाव भाव निज आत्म तत्व, उसकी उपलब्धि, उपलब्धि ने अनुभव उसके साधक है। समझ में आती है ना, क्योंकि उपलब्धि क्या, वो तो हम स्वयं है, शुद्धात्म तत्व तो हम समय है स्वयं है, उसको क्या उपलब्ध करना है, तो उसको उपलब्ध करना का अर्थ है उसका अनुभव करना, पर्याय में वो जैसा है वैसा स्वीकार करके उसी में उपयोग को स्थिर करना, उसको अनुभव के साधक है, बताए ना। उपलब्धि करना है ने क्या, शुद्धात्म तत्व हरेक जन के अपना अपना है कि नहीं है, कि वो कहीं से लाना है, आचार्य उसको देने वाले है कि ये लो शुद्धात्म तत्व तुम्हारा हम दे रहे हैं आपको, वो हरेक का है अपना, पर अनादि से उसने उसको पहचाना नहीं है, भूल जाने को उसने कभी स्वीकार ही नहीं था। हाँ। देखो कर्णान युग में भी भाषा कैसी है, शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि के वे साधक है। अरे चरणान योग कहना था उनको शायद, पता नहीं जो है, राग आता है उसके साधक नहीं लिखा है ना, कौन सा राग है, अभी संज्वलन बाकी है, 28 मूल गुण पालन करने का राग है परंतु वो राग के साधक नहीं है। व्यवहार से अंगीकार किया ऐसा कहने में आया लेकिन व्यवहार के साधक नहीं, बताया था ना, वो पंचाचार को अंगीकार किया या अंगीकार करता हूं परंतु उसके वो साधक नहीं है, क्यों, तभी भी बात की कि मैं तभी तक अंगीकार करूंगा जब तक पूर्ण रूप से वितराग नहीं हो जाऊंगा। समझ में आया, शुद्धात्म तत्व के साधक आचार्य के निकट, एक बात, शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति सिद्धि के लिए मुझे कृपा करो, ये मुझे मुझे हुए ना, जो ज के बदले झ चाहिए, जहां जहां आता है वो ठीक करते जाना, दो तीन जगह आया है यहाँ पर, क्या कहते हैं, शुद्धात्म तत्व के साधक आचार्य के निकट, एक बात, शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति यानी सिद्धि के लिए मुझे कृपा करो, ऐसे आचार्य के पास विनती कर रहे, ये विनती ऐसी करना ये भी कैसा है, ये व्यवहार है। समझ में आती है बात, क्योंकि कोई किसी को देने वाला नहीं, जो करेगा तो स्वयं से अपने में करेगा, मुझे शुद्धात्म तत्व दो, लो देखो, अरे वह तो दीनता है, पर के पास मांगना तो दीनता है, लेकिन ऐसा व्यवहार विकल्प में आता है तो ऐसा कहते हैं। समझ में आई बात, ये ऐसे ऐसा व्यवहार होता है वहां पर, ऐसे परिणाम भी होते हैं कि आचार्य के पास आप मुझे कृपा कीजिए, मुझे ये दीजिए, ऐसे कहने के वहां पद्धति है, केवल पद्धति नहीं, ऐसा उनको विकल्प आता है। प्रभु मुझे भावलिंग दो नाथ, मेरी मुक्ति हो मोक्ष हो, ऐसा साधुपद अनुभव मुझे भावलिंग दो, भावलिंग ने अंतरंग बहिरंग मुनि दशा, मुनि दशा सिद्धि से मुझे, ये कौन सी सिद्धि है, वो उपलब्धि रूप सिद्धि है, उससे मुझे शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि यानी सिद्धि यानी मुक्ति, उससे मुझे अनुग्रहित करो, कृपा करो नाथ। आहा हा, मैंने बताया ना, उपकृत करो यानी कृपा करो, आप मुझे पर मेहरबानी करो, कृपा करो, सुबह ऐसा लिखा हुआ आया सुगानी में, तो ऐसा लाए कि सुगानी मालूम है आपको? नहीं नहीं, सुगानी थे, कलकत्ता वाले थे, उनका नाम क्या था? चलो
निहाल चंद
बोला आपने, हाँ मुझे ज्ञान चंद सुना है मैंने, निहाल चंद सुगानी थे, यानी वो भी बहुत भटक भटक कर गए थे, लास्ट में सोनगढ़ पहुंचे थे, यानी बहुत अलग अलग लोगों के पास जाकर, कोई अंदर जिज्ञासा थी ना कि आत्मा को समझने की, उनकी चाह थी, तमन्ना थी, तो बहुत जगह चलता है ना उपदेश, तो भटक भटक कर वो सोनगढ़ पहुंचे थे, तो वहां गुरुदेव की प्रवचन में आई थी बात, वो राग से जो भिन्न है, यानी राग और ज्ञान का भेद, ज्ञान की संबंधी बात चली थी, तो एक प्रवचन सुना और रात में जाके वहां कमरे में ठहरे जहां ठहरे थे, तो वही विचारधारा चलते चलते सम्यक तो लेकर उठे सुबह, यानी उस पर ही उनके विचार चलते रहे, तो भेद ज्ञान करके अपना अनुभव हुआ, यानी वो सही बात क्लिक हुई उनको, तो उन्होंने कुछ पत्र भी, उनके उसका एक कलेक्शन भी है, उन्होंने बहुत सारी बातें भी लिखी, उनके पुस्तक प्रसिद्ध है, क्या नाम है, द्रव्य दृष्टि प्रकाश ऐसा कुछ है ना, तो सुबह ऐसा लिखा हुआ है सुगानी में नहीं उनकी पुस्तक में, तो ऐसा आए कि लोग चिल्लाने लगे, निश्चय का ध्रुव का जोर बहुत है ना, दूसरे के पास मांगना सुनना नुकसानकारक दीनता है, देवानुप्रिया लिखा है निश्चय में, तो ऐसा आए, देखो ये निश्चय के जोर में ऐसा कहेंगे, व्यवहार में ऐसा भाव आता है उसका आग्रह जोर करे ऐसा नहीं, जैसे गुरुदेव के पास जाकर कैसे बड़े बड़े विद्वान भी जैसे बच्चों के साथ जैसे बैठते थे सामने उनके पास दीन लीन होकर, जोर तो स्वभाव पर है, समझ में आया, ऐसा व्यवहार आता है वह जानने लायक, ओहो मोक्ष लखान तो सभी प्रकार आवे, गुरुदेव श्री चरणानियोग की शैली है, चरणानियोग में तो ऐसा आए, दूसरे के पास मांगना दीनता है, क्या तेरे पास नहीं है चीज, तेरे पास कमी है, तेरे खजाने में क्या खोट है, अपूर्णता है, कि मेरे पास तुम लाने आए हो लेने आए, वह तो विनय का शब्द है, यानी विनय से ऐसा कहेंगे, दोनों जानने लायक है, ओहो देखो ना टीका की कैसी शैली है, मुमुक्षु दोनों को जानने की बात है, पूज्य गुरुदेशी हाँ जानने की बात है, वह बात है शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि के साधक आचार्य है, और शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप सिद्धि से मुझे अनुग्रहित करो, आपके पास वह चीज मुझे दो, ऐसी चीज हाँ कौन किसे दे, यानी कौन किसी को दे नहीं सकता और कौन किसी से ले नहीं सकता, फिर भी ये चरणानियोग की ऐसी शैली आती है, और ये विनय में ऐसे परिणाम, ऐसे बोलने के परिणाम भी होते ही होते हैं। अब भगवान के पास भी भक्ति में क्या क्या नहीं बताता है ना, गिड़गिड़ाता है ना, आप मेरे तारक हो, आप ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, परंतु व्यवहार के विनय में ऐसा भाव आए बिना रहता नहीं, ये उस भूमिका में ऐसा भाव आए बिना नहीं रहता, जैसे निमित्त से कुछ नहीं होता परद्रव्य में कार्य, ऐसा कितने गुरु से ज्ञान नहीं होता, फिर भी जो हमारे विद्या गुरु थे कौन, कांजी स्वामी, उनके पीछे कितने लाखों लोग टर्न हुए ना, स्थानकवासी श्वेतांबर से तो दिगंबरी हुए, दिगंबरी कितने वो शास्त्र की बातें नहीं जानते थे उनके फॉलोअर हुए, और फिर जाके गिड़गिड़ाएंगे उनके सामने कि आप नहीं होते थे हमारी क्या दशा हो जाती, हमें ये कौन देता, आपने हमको ये सब दिया, ये कैसा, ये विनय का ऐसा वचन होता है, कृतज्ञता है ना हमारी उनके प्रति, जो आदर बुद्धि क्यों जानने का कार्य तो अपने से होता है, पर निमित्त को देखकर उनके प्रति ऐसे विनय के भाव आए बिना नहीं रहते। उनको ऐसा नहीं जाके कहेंगे कि आपने क्या किया, हमने तो अपने ज्ञान से जाना, ऐसा नहीं होता। ख्याल में आई ना बात? और शिष्य उनके जाके बोलेंगे आपके कारण हमको हुआ, तो क्या वो तो समझते, ये व्यवहार की भाषा है। वो कहने से वो कहीं से फूल नहीं जाएंगे कि हाँ देखो देखो मैंने इतने लोगों को सिखाया, ऐसा नहीं होता। देव व्यवहार के विनय में ऐसा भाव आए बिना रहता नहीं। लो मुझे अनुग्रहित करो ऐसा कहकर, मुझे मुझे करना जहां जहां आया हूं, श्रामण्यार्थी जाता हुआ प्रणत होता है। प्रणत होता है ना, नमस्कार करता है, नमन करता है, झुक जाता है। समझ में आया? व्यवहार से झुक जाए, हाँ शरीर से झुक जाए ऐसा कहते हैं। अंदर में तो है लेकिन बाहर से प्रणत होता है, यानी सामने जाकर घुटने टेक कर नमस्कार करेगा वो। अब आचार्य कहते हैं इस प्रकार यह तुझे शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप सिद्धि ऐसा कहकर, क्या कहेंगे? यह है तेरी सिद्धि, कहेंगे उनको, आशीर्वाद देंगे कहकर उस गणी के द्वारा वह श्रामण्यार्थी प्रार्थित अर्थ से संयुक्त किया जाता है। प्रार्थित यानी उन्होंने जो उनके पास विनती की, प्रार्थना की थी ना, किसकी? शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि मुझे दे दो, मुझे अनुग्रहित करो। प्रार्थित अर्थ यानी मांगा हुआ पदार्थ, क्या मांगा उन्होंने? शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप सिद्धि मुझे हो। तो कहने प्रार्थित जो अर्थ है उससे संयुक्त किया, यानी उससे युक्त किया, क्या कहकर? कि यह तुझे शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप सिद्धि, इस तरह से कह दिया। देखो प्रार्थित यानी प्रार्थना करके मांगी हुई वस्तु से संयुक्त किया जाता है। ले भाई, वो कहना ले भाई, जैसे उन्होंने, हम कहें उन्होंने दीक्षा दी, उन्होंने प्रतिमा दी, क्या दिया? दिया नहीं, किसी ने कुछ ना लिया ना दिया, परंतु वो दिया ऐसा कहने का चरणानियोग का व्यवहार है। चरणानियोग की शैली निमित्त नैमित्तिक संबंध को बताते हैं, बस इतना। समझ में आया? एक पैराग्राफ पढ़ लेते। एक साधु कहते थे ना, वे कहते थे 2007 की साल में, ये संवत की बात है, ईस्वी सन नहीं, संवत, संवत में उसमें 57 ईयर्स कम करना साल में। फिरोजाबाद में बहुत कहते थे, वृत्ति सम्मेलन हुआ था, वृत्ति सम्मेलन में व्रत लेने का बात आया था, ऐसा पेपर में आया था। वे कहे ऐसा दो ऐसा दो ऐसा दो, कहाँ व्रत है? वृत्ति सम्मेलन नाम ही झूठा है, अभी दर्शन की शुद्धि का ठिकाना नहीं, वहां वृत्ति सम्मेलन कहां से आया? समझ में आया? वह तो कहता है कि लो भाई मेरे पास कुछ आया नहीं, क्या दिया तुमने? लो पड़ी मां, मेरे पास कुछ आया नहीं, ऐसा कहते थे, यहां रहा था। यानी जो प्रतिमाएं अंगीकार करता है और वो गुरु क्या कहेंगे, ये आपके प्रतिमा लो, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं आया, आपने क्या दिया? वो क्या समझता है? प्रतिमा नाम की कोई चीज देंगे हमको, तो उन्होंने प्रतिमा, आप किसी ने व्रत दिया, व्रत दिया है कहने, ऐसा अंगीकार करो ऐसा कह दिया, ये तो कहने मात्र होती है, वो कुछ दिया नहीं जाता और कुछ लिया नहीं जाता है। पर हमने व्रत लिया या उन्होंने हमें व्रत दिया, जैसे गुरु ने बताया रात्रि भोजन मत करना, तो उन्होंने रात्रि भोजन त्याग का आपको व्रत दिया, क्या दिया आपके हाथ में, क्या दिया? आपने स्वयं ऐसा नियम लिया, उन्होंने उसको आपको दिया, ऐसा कहने में आता है। यही कह रहे वृत्ति सम्मेलन है, व्रतों को दे रहे हैं, वहां तो कुछ मिला नहीं किसी को, परंतु ये व्रत की बात कब होगी? जब पहले सम्मेलन दर्शन होगा तो बाद में होगी, और लोग ये बाहर से कुछ लेना देना के व्यवहार समझना चाहते हैं। ख्याल में है ना बात। अब बाकी चर्चा हम सोमवार को करेंगे। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालू सुवाणी मस्तकनं सदा देत हो। आशा बेन
नमो 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 नमो